நமோ அர்ஹந்தாளம், நமோ சித்தாளம், நமோ ஆயாளம், நமோ வஜ்ஜாயாளம், நமோ லோயே சௌவசாஹூணம், மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோ கணி, மங்களம் குந்த குந்தாயோ, ஜைன தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மானாம், ஜைனம் ஜயது சாசனம். ये फोटो कापी में एक नया स्तवन आज अपन लेते हैं, शांत नाष्टक। अष्टक मतलब आठ, इसमें छंद है इसलिए इसका नाम अष्टक रखा गया है। और अपने जीवन में बहुत सारे संकट के, दुख के अथवा प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हैं, तो उसमें अपने मन को शांति कैसे मिले, सांत्वना कैसे प्राप्त हो गए, उसके लिए उन्होंने शांतनाष्ट के आठ छंदों की रचना की है। वो अपन पढ़ते हैं, आप रिपीट करेंगे। शांत चित्त हो, निरविकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्याघ्र न हो, क्षोभ न हो, इदानंद रस सहज पियो, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु में सदा परिणमित होती है, कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है, अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है, वीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मन अपने में लेस नहीं आकुलता है, फिर भी सज सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के ही पथ का अनुसरण करो। सच्चे भक्त बनो व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाओ उर्म समता भाव धरो। व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। व्यग्र न व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। व्याकुल होगा भारी पाप बंद ही होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही दुर्विकल्प दुख रूप तजो। ज्ञानाभ्यास करो मन माही दुर्विकल्प दुख रूप तजो। व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। अपने में सर्वस्व है अपना पर द्रव्यों में लेश नहीं। अपने में सर्वस्व है अपना पर द्रव्यों में लेश नहीं। ओ विमूढ़ पर मैं ही क्षण क्षण करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। कल्प अकिंचित कर ही ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। अरे व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। अंतर दृष्टि से देखो नित चित परमानंदमय आत्मा स्वयं सिद्ध निरद्वंद निरामय शुद्ध बोध परमात्मा स्वयं सिद्ध आकुलता का काम नहीं कुछ ज्ञानानंद का वेदन हो आकुलता का काम व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है शिव पावे आवागमन मिटाता है जो पावे सहज तत्व ही सहज ध्येय है सहज रूप नित ध्यान धरो सहज व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो व्यग्र न हो उत्तम जिन वचनामृत पाया अनुभव कर स्वीकार करो पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो पुरुषार्थी हो ब्रह्म भावमय मंगल चर्या हो निज में ही मन रहो ब्रह्म भावमय मंगल चर्या हो निज में ही मन रहो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो शांत चित्त हो निरविकल्प हो आत्मन निज में तृप्त रहो शांत चित्त हो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो व्यग्र न हो बहुत सुंदर शांत रस अपने परिणति में उत्पन्न होवे ऐसा चिंतन कैसा होना चाहिए उसका बहुत सुंदर वर्णन इस काव्य में है। भारत में तो ये शांत नाश्ता समता सोडिसी वगैरह के बड़े बड़े वो फ्लेक्स मिलते तो उसमें लिखा रहता है, तो लोग इसको अपने घर पे अपने ड्राइंग रूम वगैरह में लगा लेते हैं, तो जब भी उस पर नजर पड़ती है तो वो बात ख्याल में आती है। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, अपने लिए ही संबोधन है। कवि स्वयं अपने आप से ही कह रहे हैं कि हे भाई, अपने चित्त को शांत कर। कैसे शांत होगा कि जब विकल्प शांत होंगे। तो विकल्प माने राग द्वेष, राग द्वेष शांत होंगे तो चित्त में शांति होगी। और राग द्वेष कैसे शांत होंगे कि आत्मन निज में तृप्त रहो, कि अपने स्वरूप में तृप्त रहने से निर्विकल्प दशा और शांति प्रकट होती है। तो व्यग्रता यानी जो उद्वेग पैदा होता है, एक समझ लो टेंशन पैदा हो जाता है, शुद्धता हो जाती है, कषाय हो जाती है, तो वो मिट जाए और सहज ही चिदानंद रस का पान करो, ऐसी प्रेरणा इसमें दी है। दो चार छंद बहुत बढ़िया है। देखिए पहला छंद है, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। देखिए हमारी दृष्टि आत्मसन्मुख क्यों नहीं होती। हम आत्मा के बारे में इतना सोचते हैं, विचार करते हैं, कोशिश करते हैं सामायिक में स्वरूप सन्मुख होने की, ध्यान में अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर उपयोग क्यों नहीं जाता। उसका कारण यह है कि पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ बुद्धि पड़ी है और पर में कर्ता बुद्धि पड़ी। तो पहले यथार्थ तत्व ज्ञान से वो इष्टनिष्ठ बुद्धि का अनुभव ढीला होवे, वो मिथ्या पावर डाउन होवे और स्वरूप की महिमा बढ़े कि आत्मा ज्ञायक है, अकर्ता स्वभावी है। आत्मा यानी मैं तो अकर्ता स्वरूप हूँ, तो पर में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसी मान्यता होने से वो अपने अंदर परिणति आ जाएगी। तो कर नहीं सकता हूँ ऐसा निर्णय कैसे हो गए, तो भरोसा हो गए कि हम नहीं करेंगे, हम उसके सन्मुख नहीं होंगे, हम विकल्प नहीं करेंगे, तो भी जो काम बाहर होने वाला है वो होने ही वाला है, वो रुकने वाला नहीं है दुनिया का काम। अब देखो आदिनाथ भगवान हुए मोक्ष चले गए, 24 तीर्थंकर हुए मोक्ष चले गए, तो दुनिया रुक गई, बंद हो गई है। इतने बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट और भी सब हुए, वे सब चले गए, तो जगत का कौन सा पर्णमन रुक गया मुझे बताइए। तो अगर हम पर की तरफ दृष्टि नहीं दे रहे हैं क्यों प्रिग्नेश, तो दुनिया का कौन सा काम रुक जाएगा। इसलिए ये श्रद्धा करने के लिए ये पॉइंट है कि सभी वस्तुएं स्वयं ही स्वयं में, स्वयं यानी पोते और स्वयं में यानी पोताना में, अपने में यानी स्वयं परिणमित होती है, यानी कोई दूसरा परिणमित नहीं कराता। उसके लिए कोई दूसरा कुछ करे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और स्वयं में परिणमित होती है यानी पर में परिणमन नहीं होता। आत्मा भी अपने में स्वयं परिणमन करता है, पर में नहीं करता। पर पदार्थ अपने में स्वयं परिणमन करते हैं, शरीर है, स्त्री पुत्र है, मकान है, दुकान है, धंधा व्यापार है, समाज है, जो कुछ भी है वो स्वयं अपने में परिणमन करता है और हमारे में कुछ नहीं करता। यानी वो हमें दुख उत्पन्न नहीं करता और सुख उत्पन्न नहीं करता। ये टीवी चलता है ना और बच्चे देखते हैं, या समझ लो जो भी रागी हैं अपन लोग देखते हैं, तो मजा आती है। तो कहते हो मजा अपने में स्वयं से, स्वयं के कारण आया है, अपनी क्षणिक उपादान की योग्यता से, और वो अपने में चल रहा है, उससे इधर सुख नहीं आया, दुख नहीं आया है। इसलिए लिखा इष्ट अनिष्ट कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। पर पदार्थ इष्ट हैं अथवा अनिष्ट हैं ऐसा है नहीं, फिर भी उन्हें इष्ट अनिष्ट मानना ये कल्पना झूठी है और व्यर्थ है। व्यर्थ माने नॉनसेंस, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। हम चाहें कि इष्ट हो जाए तो वो इष्ट नहीं होने वाला, हम अनिष्ट मान लें तो कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। वीर वीर हो मोह भाव तज, इसमें वीरता है। आपने वो सुना होगा ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो वीर का क्या मतलब, कोई एक चांटा मारे हो हम उसको दो मार दे रहे, ख्याल में आए ना। इसमें वीरता नहीं है, इसमें तो कायरता है। मतलब हम उसके अधीन हो गए, हमने उसको रिएक्शन दिया, हम उससे निरपेक्ष नहीं रह सके। दुनिया में वीरता की परिभाषा और अध्यात्म में वीरता की परिभाषा में बिल्कुल रिवर्स गियर लगता है, 3-6 का आंकड़ा है, हैं? दुनिया में ऐसा कहते इतने लोगों को मार डाला, ख्याल में आए ना, वो उसामा बिन लादेन ने कितने यहाँ पे वो 9/11 किया था, कितने लोगों को मार दिया, फिर उसकी क्या दशा हुई, चूहे जैसा इस पहाड़ी में उस पहाड़ी में उस बंगले में उस बंगले में छुप छुप के फिरता फिरा, फिर अमेरिका ने उसको मार दिया तो बड़ा वीर हो गया। वास्तव में शत्रु को मारने में वीरता नहीं है, शत्रुता को मारने में वीरता है। फर्क समझ में आया? दुश्मन तो कोई है ही नहीं, लेकिन ऐसा व्यवहार करें कि दुश्मनी खत्म हो जाए। लौकिक दृष्टि से बात करता हूँ, आत्मा की वीरता की बात तो अलग है। दुश्मनी के भीतर दुश्मनी खत्म हो जाए, वात्सल्य पैदा हो गए, ये सही मार्ग है। तुम एक मारोगे 10 पैदा हो जाएंगे। कोई भी दुनिया का जो किसी कोई बाहे शत्रु को मारने में, शत्रु कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनकी परंपरा, उनकी समाज, उनकी संतान, वो सब उस परंपरा को फॉलो करते हैं। तो एक को मारो तो 10 खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा ना कि हम बदला लेके रहेंगे, तुम सावधान हो जाओ। हम न जाने कब 9/11 के बजाय 10/11 कर देगा कुछ, समझ में आया ना। तो धीरता और वीरता, वीरता माने मूल शत्रु का नाश करना, इसका नाम है वीरता। और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना, इसका नाम है धीरता। समझ में आया? धीर वीर हो मोह भाव तर आत्म अनुभव किया करो। देखो प्रभु के ज्ञान मान सब लोकालोक झलकता है। भगवान के ज्ञान में सारी दुनिया की जितनी घटनाएं अच्छी बुरी सब होने वाली हैं। अरे ये भारत की या अमेरिका की नहीं, 3 लोक की, नरक की, स्वर्ग की, और जितने और भी पृथ्वियां हैं कि नहीं, और भी ऐसे ग्रह हैं कि नहीं, और भी जगह बस्तियां हैं कि नहीं, वो सब उनके ज्ञान में झलकता है। लेकिन अपने में मग्न रहते, ये सबसे बड़ी विशेषता है। उनके ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन किसी भी पदार्थ का लक्ष्य नहीं करते, उसमें राग द्वेष नहीं करते। और हमारे ज्ञान में बहुत थोड़ा झलकता है, लेकिन जितना भी झलकता है उसमें राग द्वेष पूरा करते। ये दुख का मूल कारण है, दुख का मूल बीज है। फिर भी सहज मग्न अपने में लेश नहीं आकुलता है। ये तो यहाँ एक बार भक्ति कर रही थी शायद पिछले साल, वो भगवान की मुद्रा देखो, तो कल मौका लगा तो लेंगे अगर टाइम मिला तो, है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अंतर्मुख मुद्रा है, पर की ओर देखते ही नहीं, लोकालोक झलक ही रहा है ज्ञान में, तो अभी फिर पर की ओर देखने की क्या जरूरत है, समझ में आया ना। और उसमें उन्हें राग द्वेष नहीं है, इसलिए पर सन्मुख वृत्ति नहीं होती, तो अपने में ही लीन है। छाला जिन्होंने लिखी है, दौलत राम जी ने, उन्होंने एक स्तवन बहुत बढ़िया लिखा है, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिगज रहस विहीन। निजानंद रस अपने में लीन है, जानते सब कुछ हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, और अपन जानते बहुत थोड़ा है लेकिन प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, इतना फर्क है। सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के, भगवान के सच्चे भक्त बनो और उन्हीं के पथ का अनुसरण करो। कौन सा पथ? अपने में देखना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपनी ही महिमा होना, अपने में जम जाना, रम जाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये प्रभु का मार्ग है ना। वचना अमृत वीत राग ना, परम शांत रस मूल, औषधि जे भव रोग ना, कायर ने प्रतिकूल। परम शांत रस मूल, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनामृत हैं। फिर मुनिराजों का उदाहरण लिया, कोई कहे भगवान तो पूर्ण वितराग हो गए, केवली हो गए, अब लोकालोक झलकता है तो वितराग हो गए, तो कौन सी बड़ी बात, धर्मस्थों को तो तकलीफ होती ही है ना। अरे ऐसा नहीं है भैया, जिसकी कसाय टूट जाती है उसे कैसे ही उपसर्ग आवे, बाहर में कैसा प्रतिकूल प्रसंग बने, वो कभी राग द्वेष नहीं करता, विचलित नहीं होता माने राग द्वेष नहीं करता। वास्तव में राग द्वेष होना इसी का नाम विचलित होना है। देखो मान लीजिए यहाँ कोई गलत बात हो जाए जो मुझे पसंद नहीं आए और मुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन मैं शर्म के कारण लिहाज के कारण मैं चुप रह जाऊं, बोलूं नहीं, तो मैं विचलित हुआ कि नहीं हुआ? है बोला तो कुछ नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर में मन में जो राग द्वेष की लहर उठी, जो उसकी अग्नि जली, यानी मैं अपने स्वरूप से विचलित हो गया। तो इसलिए राग द्वेष की बात है। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। हमारे यहाँ तो बहुत ऐसी मुनि राजों की कथाएं आती हैं। पांच पांडवों को लोहे के कड़े पहनाए गए, गज कुमार मुनि के सिर पर वो क्या बोलते हैं सिगड़ी जलाई गई है। सात सौ मुनियों को वो उपसर्ग किया, रक्षाबंधन की कथा में है ना, रक्षाबंधन जिसके कारण मानते हैं, सात सौ मुनियों पर उपसर्ग किया। सुकौशल स्वामी, सुकमाल मुनिराज, कैसे कैसे उपसर्ग हुए। लेकिन धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं तिगे, तिगे माने विचलित नहीं हुए, चलित नहीं हुए। तो वे आराधना में लीन रहे, वे आत्मा के ध्यान में लीन रहे। सबसे बड़ा उदाहरण तो पारसनाथ और कमठ का है। जब पारसनाथ मुनि अवस्था में थे तो कमठ ने कैसे कैसे उपसर्ग किए। लेकिन वास्तव में एक थोड़ी दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कष्ट कौन भोग रहा था? कमठ के पारसनाथ, बोलो दिनेश भाई। अपन को ऐसा लगता है कमठ ने पारसनाथ पर उपसर्ग किया, ये बहिर्दृष्टि का कथन है। पत्थर बरसाए होंगे, आंधी लाया होगा, तूफान लाया होगा, हरिकेन वो जोरदार सुनामी आई होगी, समझ में आया ना, बहुत तेज तूफान आया होगा, सब किया होगा। लेकिन पारसनाथ का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा ना, अभी तो आत्मा में लीन रहे, तो उनपे कहाँ उपसर्ग हुआ? अगर उनका बिगड़ जाता, उनका उपयोग चलित हो जाता, उन्हें कमठ के प्रति द्वेष हो जाता, क्रोध हो जाता, तो अपन मानते गए उनकी आराधना भंग हो गई और उन पर उपसर्ग हुआ। लेकिन उनकी परिणति में जो रत्नत्रय की साधना चल रही थी वो तो पूरी तरह से सुरक्षित रही। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो कमठ ने स्वयं के ऊपर उपसर्ग किया। क्या किया? कमठ ने स्वयं के ऊपर उपसर्ग किया। काय से उपसर्ग किया? क्रोध अग्नि से। उसके परिणामों में क्रोध की अग्नि जली, तो जल कौन रहा था? पारसनाथ के कमठ, कमठ जल रहा था, तो कमठ स्वयं ही जल रहा था कषाय की अग्नि में। मुनिराज पारसनाथ तो अपने स्वरूप के ध्यान में लीन थे। और फिर जब धर्मेंद्र पद्मावती आए उस विकल्प से कि ये उपसर्ग को दूर किया जाए, तो वे भी राग की अग्नि में जल रहे थे। लेकिन पारसनाथ को न तो कमठ के प्रति द्वेष हुआ और न धर्मेंद्र पद्मावती के प्रति राग हुआ। उनके लिए उन्होंने तो जान लिया कि इसको द्वेष है, ये क्रोध में जल रहा है और ये भक्ति के राग में जल रहा है। एक की अग्नि जरा ज्यादा तेज है, एक की मंद है, एक को मंद राग है, एक को तीव्र राग है, समझ में आया? और प्रभु कैसे हैं? वो तो वीतराग। ये है धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो। कितना सिंपल सरल और हृदय ग्राही प्रेरणा है इसमें, तो उनको अपना आदर्श बनाओ। तो हमसे नहीं हो सकता, सही है। अभी जब तक राग द्वेष है, कमजोर भूमिका है, भेद विज्ञान नहीं है, तो नहीं होगा। अभी समझ में आया? तो उससे घबराना मत, मन में भावना ऐसी रखना, बार बार चिंतन इस दशा का करना, विचार इस दशा का करना। बहुत से लोगों की शिकायत है कि साहब उस टाइम पे तो याद नहीं रहता है, अभी तो सब याद रहता है, सब आपने बहुत बढ़िया है, राग द्वेष नहीं करना, स्वरूप की महिमा करना, पर पदार्थ स्तन इष्ट नहीं है, आप जैसा कहो वैसा हम कल आपको दोबारा सुना सकते हैं प्रैक्टिस करके, समझ में आया ना? तो टेप रिकॉर्ड भी सुना सकता है। लेकिन जब बीतती है, जब क्लेश होता है, जब किसी से कसाय होती है, जब कोई प्रसंग बनता है, तो सब भूल जाते हैं। तो क्या करें? भूल जाते तो याद करो, और उपाय क्या है दूसरा? उस समय भूल जाते, बाद में याद करो कि भाई मैं उस समय ये बात भूल गया था, उस समय इसी संयोगों में ही तन्मय हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, ऐसा करके अब वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। जब करो तभी शांति मिलेगी। समझ में आया? उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो। फिर व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। अरे व्याकुलता कोई दुख कैसे? समझ में आया? दुख से दुख कैसे मिटेगा? कीचड़ से कीचड़ कैसे साफ होएगा? तो आकुलता करने से दुख दूर नहीं होगा, तो क्या है, उल्टे पाप बंद होगा। इसलिए वो सावधान करते हैं कि हे भव्य जीव, अपाय यानी सही उपाय के बदले विपरीत उपाय नहीं हो जा रहे। लेने चौबे जी, हिंदी में एक कहावत है, एक आदमी था उसका नाम था चौबे। उसमें चौबे में चार चीजें होती हैं, फोर पॉइंट, तो अपन छह वाला होना चाहिए, तो छब्बे बनने की कोशिश करें। एक मामला गड़बड़ हो गया तो दुबे बन के रह गया। ऐसा हिंदी में कहावत है, चौबे जी छब्बे बनने गए थे लेकिन दुबे बन के रह गए। तो हम सोचेंगे हमें आकुलता करके और रिएक्शन दे करके और राग द्वेष करके सुखी हो जाएंगे, तो अभी तो दुखी होंगे लेकिन भविष्य में भी दुखी होने का बीज डाल लेंगे। कौन सा बीज? कर्म बंध का। ख्याल में आए ना? ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ये पंक्ति पहले भी आई थी। ज्ञानाभ्यास करो का अर्थ बताया था, ज्ञानाभ्यास का मेरे ख्याल है, ज्ञानाभ्यास माने क्या? ज्ञान में ज्ञान को देखना है, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को देखना। जैसे मिश्री बोलते हैं तो अपन मिश्री में क्या देखते, ज्ञान में क्या झलकता है? जो मिश्री है तो मीठी होती, तो हम उसमें मिश्री का स्वभाव सुन, मिश्री शब्द बोला और मीठी मिठास वाली कोई चीज है, ऐसा तुरंत ख्याल में आ जाता है। तो मिश्री में मिठास का स्वभाव देख लेते हैं, अग्नि बोलो तो गर्म चीज तो उष्णता देख लेते हैं, नीम बोलो तो कड़वा कड़वा देख लेते हैं। ख्याल में आया? तो ज्ञान बोलने से क्या देखना चाहिए? तो होता क्या है, हमें ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता और बाकी सब दिखता है। कुर्सी दिखती है, टेबल दिखती है, शरीर दिखता है, सुंदर रूप दिखता है, कुरूप दिखता है, भोजन दिखता है, भोजन का स्वाद दिखता है। समझ में आया? मीठा है, तीखा है, फीका है, मोड़ा है, वो सब दिखता है, लेकिन जिसको दिखता है, जिसमें दिखता है, जिसमें से दिखता है, ख्याल में आया ना, जिसके लिए दिखता है, जिसके आधार से दिखता है, वो नहीं दिखता। वो ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? आपने चाय पी और उसमें शक्कर डबल हो गई तो मीठा स्वाद आया, तो मीठे स्वाद का ज्ञान किधर से आया? शक्कर में से आया कि ज्ञान में से ही प्रकट हुआ? सोचने की बात है, ये साइंस विचित्र है बिल्कुल, दुनिया इस पर भरोसा नहीं कर सकती। आधुनिक विज्ञान की खोज गेयों की खोज है। आधुनिक विज्ञान जो है वो गेयों को खोजता है कि मंगल पे पानी है कि नहीं है। समझ में आया ना? वहाँ प्लांट बढ़िया है, वहाँ खरीद ले तो फिर अमेरिका वहाँ भी शासन करेगा। अमेरिका दुनिया पे तो शासन करने की सोचता है, आसमान में भी वही अपना शासन करने की सोचता है, गनीमत से नरक में जाके शासन न करने की सोचे। समझ में आया ना? है हम गेयों की शोध खोज करते, लेकिन खोजने वाला जो उसको जानने वाला है, उसकी रिसर्च करने वाला है, वो कहाँ, वो ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? परमाणु में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, वो जाना किसने? वो ज्ञान कहाँ से आया? परमाणु में से आया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव है, उसमें से ज्ञान प्रकट हुआ। तो जिसमें से ज्ञान प्रकट होता है उसको देखना, उसको जानना। समझ में आया? ज्ञान में ज्ञान का वेदन करना। ये झलकते हैं लेकिन ये जो झलक रहे हैं वो भी ज्ञान ही है। क्या? ये जो झलकते हैं वो वास्तव में क्या है? जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो ये अपना शरीर है, ये तो हाड़ मांस का बना हुआ है, ये तो जड़ है, ठीक है। लेकिन जो दर्पण में अपना शरीर दिख रहा है वो हाड़ मांस का है, इधर भी कैंसर है, उधर भी कैंसर है, तो उसको भी गोली खिलाओ, अपन भी गोली खाओ। समझ में आए ना? तो दर्पण में जो दिखता है वो ये पुद्गल का हाड़ मांस, पुद्गल तो है लेकिन हाड़ मांस वाला शरीर नहीं है वो। वो दर्पण की स्वच्छता का परिणाम है, यानी वो दर्पण ही है। दर्पण में बनने वाला चित्र क्या है? दर्पण है। ये आपने फोटो लगाई इतनी बढ़िया, सच बताओ ये किसकी? समझ में आया ना? सब बात पुद्गल की, कागज, कागज का परिणाम है ना, कागज पे बनी है। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा ये कागज है, ये क्या बोलेंगे? ये श्रीमंत। क्योंकि अगर कागज लगाना होता तो कोरा कागज भी लगा सकते थे, और उसका भी देने वाला समझ लो एक डॉलर भी कोई देने वाला नहीं मिलता। इसके तो कम से कम 25-50 हजार डॉलर मिले होंगे। ख्याल में आए ना? क्यों? उसको आकार से मतलब है। कागज से आप प्लाई पे लगा दो, प्लास्टिक पे लगा दो, कागज पे लगा दो, किसी पे भी चित्र बने, लेकिन हम देखते हैं आकार को, तो हमारे अंदर भक्ति का भाव उछलता है। और सामान्य ऐसी दीवार को देखो जिसमें कोई आकार नहीं बनी है तो क्या आएगा? तो नो रिएक्शन। समझ में आया? तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये जिनका आकार है उनका इससे क्या कनेक्शन है, ये सोचो। श्रीमद जी का फोटो है, तो श्रीमद जी का जो पर्सनालिटी थी, जो वो भव्य आत्मा था, जो व्यक्ति था, उसने बनाया है क्या? कि वो इसके अंदर है क्या? समझ में आए ना? श्रीमद जी तो इसके अंदर नहीं है। श्रीमद जैसा आकार है जिसे देखने से श्रीमद की याद आ जाती, इसलिए तो लगाते, नहीं तो काहे को लगाते? समझ में आए ना? तो दर्पण में जो आकार बनता है, तो जिसका बनता है उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। हमारा फेस उसमें दिख रहा है तो हमारे फेस का दर्पण के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। वो आकार दर्पण में, दर्पण से, दर्पण के लिए, दर्पण के द्वारा, दर्पण के आधार से, ये छह बोल आते हैं ना, कौन से है ये? चल, दर्पण से, दर्पण के लिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, वो सब उसका उसमें ही है। समझ में आया? तो ऐसा जानना, तो ज्ञान को ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के आधार से, ज्ञान में से जानना, ये ज्ञानाभ्यास करो मन, इसका नाम धर्म है। वास्तव में देखा जाए तो संबल तत्व यहाँ से प्रारंभ होता है, मुक्ति का मार्ग या सम्यक दर्शन यहाँ से प्रारंभ होता है। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, उसका रिजल्ट क्या आएगा? दुर्विकल्प दुख रूप तजो। दुर्विकल्प यानी जो खोटे विकल्प हैं, दुख रूप हैं, वो मिट जाए। देखो भैया, ज्ञान को देखने के अलावा या ज्ञान में ज्ञान की सन्मुखता के अलावा दूसरा कोई मार्ग तीन काल में सुखी होने का है ही नहीं। वो भी आत्मसिद्धि में एक पंक्ति है शायद, एक होय तृण काल मां परमा रसनो पंथ, प्रेरे से परमार्थ ने से व्यवहार समंत। व्यवहार कौन? समंत यानी सम्यक, यही है ना, सम्यक व्यवहार, सच्चा व्यवहार। किसको कहना? जो परमार्थ को में लगावे, परमार्थ को के लिए हेल्प करे, परमार्थ का पोषण करे, परमार्थ का ज्ञान करावे, वो व्यवहार है सच्चा। लेकिन मार्ग तो तीन काल में एक ही होता है। मुझे समझ में नहीं आता, जब इतना स्पष्ट श्रीमद जी जैसे महापुरुषों का वचनामृत है, तो हमारे दिमाग में ये समझ लो दुनिया भर में जो अलग अलग कल्पनाएं चलती हैं, वो भी यथार्थ है। ये कैसे हो? एक होए तरण काल में परमार्थन हो पंथ। कभी भी शंका पड़े जिन्हें भगवान के वचनों में या मार्ग में, तो उस पंक्ति को याद कर लेना कि एक होए तरण काल में परमार्थन हो पंथ। देखो, अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेश नहीं। सर्वस्व, स्व है ना, स्व तो, स्व तो अपने में ही रहेगा, सर्वस्व। बहुत से लोग कहते हैं हे भगवान, वो गुरु के पास गया, मैं आपके चरणों में सर्वस्व समर्पण करना चाहता। क्या है भाई तेरा सर्वस्व? मेरा 1-2 करोड़ का बंगला है, ये गाड़ी है, ये जमीन है, ये सर्वस्व है कि पर है? पर को स्व माना, ऑफर करें गुरु के चरणों में अर्पित करें, स्व को अर्पित कर। स्व माने श्रद्धा, स्व माने ज्ञान, स्व माने आचरण। ये सब में श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये स्व है कि ये शरीर मैं आपके चरणों में अपने सारी जिंदगी लगाना चाहता हूँ, ये मेरे शरीर आपके लिए समर्पित है, आपकी सेवा करूंगा, ये करूंगा। अरे शरीर सर्वस्व नहीं है, वो पूर्ण रूप से पर है, सर्व पर और सर्वस्व। समझ में आया ना, दोनों शब्दों का विचार करना। तो अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेश नहीं। लेश माने किंचित, 1% भी है पर में, 5 इंद्रियों के विषय में न ज्ञान है न सुख है, पर वस्तुओं में न ज्ञान है न सुख है, इसलिए उनके आश्रय से ज्ञान और सुख प्रकट नहीं होता। ज्ञान और सुख किसमें है? अपने में। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेश नहीं। हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण करो व्यर्थ संकलेश नहीं। मूल हो करके पर में ही, मूल यानी उसको अपना मान के, सुख दुख का कारण मानकर व्यर्थ में संकलेश मत करो। जैसे देखो कितना बढ़िया समझाया है, अरे विकल्प अकिंचित कर ही ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। विकल्प तो अकिंचित कर है, इनके जिनकी ये रचना है ब्रह्मचारी रविन्द्र जी की, उनके बहुत सारे स्लोगन्स भी हैं। और एक बार हमने शायद पिछले साल कुछ स्टिकर्स दिए थे यहाँ पे, कोई जिसको लगाना हो अच्छी जगह लगा सकते हैं। तो उसमें एक एक सूत्र ये आता है, विकल्प पर में अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थ करने वाला है। बोलो मुकुंद भाई, पर में अकिंचित कर है यानी जैसे कि मान लीजिए शरीर में रोग आया तो अब विकल्प हुआ गई बड़ा तकलीफ है, वो जो द्वेष होता ना उससे दुख होना वो विकल्प ही है, दुखी होना ही विकल्प है। ख्याल में आए ना, क्योंकि द्वेष की कल्पना में राग द्वेष को विकल्प कहते हैं। तो जो जो उसके प्रति द्वेष का परिणाम है या उसको लेके आकुलता का परिणाम है, उससे रोग तो मिटेगा नहीं। ख्याल में आया ना, आकुलता करने से रोग तो मिटेगा नहीं और अपने पाप का बंद और होगा। इसलिए विकल्प पर में अकिंचित कर, अकिंचित कर। अकिंचित कर माने आ माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, कर माने करने वाला। यानी जिसको लेकर हम विकल्प करते हैं उसमें हमारे विकल्पों से नो चेंज, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। विकल्पों से होगा तो उसकी योग्यता से जो होना है वो होगा गिरीश भाई, लेकिन अपने को क्या लाभ हुआ उस विकल्प करने से? अपने को क्या लाभ हुआ? दुख तो हुआ और भविष्य के लिए भी पाप का बंध किया, तो अनर्थकारी। तो क्या करना? करना क्या? जो है सो है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। अरे तुम नहीं रहोगे, राग द्वेष करोगे तो भी स्वभाव तो ज्ञाता ही रहेगा, तो ज्ञान स्वभाव मिट नहीं जाएगा, लेकिन उसका लक्ष्य करके उसका वेदन करने में आनंद आएगा, पर का लक्ष्य करने में दुख होने वाला है। अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंदमय आत्मा। अभी अपन शास्त्र आधार से सोचते हैं, विकल्पों में सोचते हैं, गुरु आज्ञा से मानते हैं, अनुभव से नहीं मानते, यहां तक बात नहीं आ पाती। समझ में आया? परंपरा से मानते, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैन शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरुदेव ने ऐसा बताया है, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। तो वो तो ऐसा विकल्प से कहां ज्ञानानंद स्वभाव दिखेगा? समझ में आया ना, ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान से ही दिखेगा। अरे ये भी ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान से दिखते हैं, तो फिर ज्ञान स्वभाव विकल्पों से कैसे दिख जाए? ज्ञान स्वभाव के लिए भी ज्ञान की ही जरूरत है। ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंदमय आत्मा। अंतर्दृष्टि से देखो तो आत्मा परमानंदमय है, स्वयं सिद्ध निर्द्वंद निरामय। स्वयं सिद्ध किसने बनाया? आत्मा को किसने बनाया? आत्मा की रचना किसने की? स्वयं सिद्ध है द्रव्य अनादि निधन। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अन्य दर्शनों में एक सृष्टिकर्ता की कल्पना है, और वो सृष्टि की रचना करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार या उनके कंट्रोल के अनुसार सब व्यवस्था होती। अपने यहाँ इसकी बहुत मीमांसा है, बड़े बड़े न्याय शास्त्र इस विषय पर लिखे गए हैं। और यहाँ कहते हैं किन हु न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को। छह धारा में आता है ये लोक, ये छह द्रव्य, ये आसमान, ये जमीन, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये चांद, ये धूप, ये छाया, ये खेती, ये फसल, ये किसी ने बनाई नहीं है। ये छह द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। आत्मा भी स्वयं सिद्ध है और जगत भी स्वयं सिद्ध है। आकुलता का काम नहीं कुछ, ज्ञानानंद का वेदन हो है। आकुलता का कोई काम नहीं है। और ये कितना बढ़िया है, सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। सहज का मतलब समझने की कोशिश करना चाहिए। सहज का मतलब जो ऑटोमेटिक अपनी योग्यता से अपने कारण से जो काम हो रहा है वो सहज, समझ में आया। और हमें जो विकल्प जो हमारे होते हैं करने के वो असहज हैं, हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई प्रसंग ऐसा बने कि आपको एयरपोर्ट जाना है और आप लेट हो रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा है, तो जो विकल्प करना नहीं पड़ेगा, जो आकुलता होगी वो करना नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उधर लक्ष्य जाएगा, वो अपने आप वो आकुलता होगी। लेकिन जब आप वहां पहुंचे और पता चला कि फ्लाइट आधा घंटा लेट है और आपका चेक इन हो गया और सिक्योरिटी में से भी निकल के गेट पर पहुंच गए, तो फिर जो हास समझ आया ना, तो जो आपका पारा डाउन होगा आकुलता का, तो वो करना नहीं पड़ेगा, वो सहज होएगा। तो जो बिना किए जो परिणाम में से दुनिया में देखा जाए तो सब सहज है। एक एक वो हुए सहजानंद जी वर्णी, उनका एक बहुत सुंदर गीत पहले मैंने कभी गाया होगा, यहाँ बताया भी होगा। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। उसमें एक बहुत सुंदर कड़ी आती है लास्ट में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जगत में प्रत्येक परिणमन सहज होता है, लेकिन हम ही उसको असहज बनाने की चेष्टा करके खुद असहज हो जाते हैं। वो तो नहीं होता, लेकिन हम राग द्वेष करके असहज हो जाते हैं। तो सहज तत्व कौन है? सहज तत्व ये पुद्गल भी सहज तत्व है, भगवान आत्मा भी सहज तत्व है, सब दुनिया में सहज है। और सहज को स्वीकार करना वो उसकी भावना, वो भी सहज। वो जबरदस्ती करने से या किसी के दबाव में आके हमें अंदर में बैठता तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, गुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, नहीं मानेंगे तो नरक निगोद में भटकना पड़ेगा, ऐसा मतलब उसको पराधीनता व स्वीकार करना वो सहजता नहीं है। है ऐसा वस्तु का स्वरूप अपने ज्ञान में दिखता है, बस बात खत्म। ज्ञान बोलता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो वो सहज तत्व की सहज भावना आनंद प्रदाता है। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व ही सहज, कितने बार सहज आया? चार बार आया और पांच बार सहज तत्व की सहज भावना। तो सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित ध्यान धरो। वो ध्येय भी अपना सहज, जिसकी महिमा आएगी तो उसका ध्यान हुए बिना नहीं रहेगा, समझ में आया ना। जैसे अपन कहते हैं ध्यान करने बैठते तो उपयोग दुकान पे चला जाता है, तो वो सहज ही चला जाता है ना, जब खींच के तो नहीं ले जाते ना, इधर लाने के लिए खींचना पड़ता है, और दुकान पर उपयोग जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक चले। क्यों चला गया? क्योंकि उसे अपना माना, समझ में आया, उसमें सुख माना। दो चीजें, अपना माना और उसमें सुख माना, इसलिए चला गया। अच्छा दुकान पे उपयोग जाता है, किसकी दुकान पे जाता है? किसकी दुकान पे जाता है? घर पे जाता है, किसके घर पे जाता है? बच्चे याद आते हैं, किसके बच्चे याद आते हैं? मुकुंद भाई हैं, जो अपने हैं वो याद आते, दुनिया भर के तो नहीं आते। तो फिर उपयोग बाहर जाने का कारण क्या हुआ? अपनापन हुआ ना। विचार कर, न्याय से विचार करना कि अगर पर पदार्थ के कारण से ही उपयोग उधर खिंच रहा है तो सबके प्रति जाना चाहिए, पड़ोसी के बच्चे भी याद आना चाहिए। समझ में आया? लेकिन अपने बच्चे याद आएंगे इसका मतलब है कि उसमें अपनापन और सुख बुद्धि, इसलिए हमारा उपयोग वहां जाता है। तो वहां उपयोग न जाए और ज्यायक में आए, उसका क्या उपाय है? क्या उसका उपाय यह है कि उसमें से अपनापन टूटे और अपने चैतन्य स्वभाव में अपनापन आवे, ख्याल में आए ना? तो फिर उपयोग मुनि राजों का तो नहीं जाता। मुनि राजों का उपयोग तो परे पर की ओर छोड़ो, खुद भी उन्होंने जो भूतकाल में राज अवस्था में थे, इधर से उधर से उधर, उनका उपयोग नहीं भटकता, ख्याल में आए ना? तो इस तरह उनका उपयोग आत्मा में ही रहे, अनंत भगवान का तो नहीं उपयोग आत्मा में से बाहर जाता है। तो इस तरह है, सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित ध्यान धरो। अब अंत में देखो, उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो, पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो। विषय कसाय छोड़ना इसमें पुरुषार्थ है। और एक बात समझना, किसी भी वस्तु का त्याग तभी होता है जबकि किसी दूसरी चीज को ग्रहण किया जाए, ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। तो स्वरूप का ग्रहण होगा तो पर पदार्थों का, पर वस्तुओं का त्याग होगा। समझ में आया? परिहार माने त्याग। तो पुरुषार्थी होकर के स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो। ब्रह्म भाव मय मंगल चर्या, ये जिनने लिखा है वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य का बहुत समझ लो रस और उसकी बात बार बार आती है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग, समझ में आए ना? अकेले कोई एक स्पर्श इंद्रिय के विषय का त्याग नहीं, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग। इसलिए सबका लिखा, विषयों का परिहार करो, ब्रह्मचर्य भावमय मंगलचर्या हो, निज में ही मग्न रहो। इस तरह अब आप जब इसको पढ़ेंगे इसी स्टाइल में तो आपको इसका रस बहुत बनेगा। अभी तीन पेज, तीन नंबर पेज कहाँ गया? ये है। अच्छा, इसमें तीन नंबर पेज चाहिए ना, इसमें होगा मेरा। हाँ, ये है। हाँ जी, थोड़ी चर्चा अपन निश्चय व्यवहार की करते हैं जो अभी चल रही है अपनी। इसका मंगलाचरण बोलें, सभी रिपीट करें। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरहंतादि महान, करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, गाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार में जो जीव जैन हैं, जिन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं लेकिन किस नए से किस व्यू से क्या कहा गया है उसको नहीं समझते हैं, इसलिए उनको निश्चयाभास या व्यवहाराभास या उभयाभास ऐसा भ्रम हो जाता है कि आभास माने ऐसा है नहीं लेकिन वैसा उनको फील होने लगता है। समझ में आया? जैसा है नहीं वैसा भाषित होना उसका नाम है आभास। तो उभयाभाषी वाले प्रकरण में निश्चय और व्यवहार की चर्चा चल रही है और ये अपना जो अंश है ये उभयाभास के प्रश्नोत्तर हैं, उसमें सबसे ऊपर देखिए 3 नंबर पेज पर उभयाभाषी की 2 मान्यताओं का अभी अपन ने खुलासा किया। पहली मान्यता कौन सी है? ख्याल है किसी को? 2 दिन से चल रही है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो टोडर मजी ने क्या कहा कि मोक्ष मार्ग तो एक वितराग भाव है और उसको दृष्टिव संयम के माध्यम से उसका कथन करना वो व्यवहार है। मोक्ष मार्ग तो एक है, कथन 2 है। फिर दूसरी मान्यता क्या थी कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे तो वो निश्चय कहलाएगा और दृष्टिव संयम का पालन करेंगे तो वो व्यवहार कहलाएगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई, किसी का नाम निश्चय किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं, एक ही चीज को 2 तरीके से कथन करना उसका यथार्थ निरूपण करना वो निश्चय है और उपचरित निरूपण करना वो व्यवहार। बराबर है दिनेश भाई? अभी तीसरी, ये सा के अंतर्गत लिखा है, निश्चय व्यवहार दोनों को अंगीकार करने के लिए श्रद्धान निश्चय का और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना चाहिए। वो क्या लोग क्या सोचते हैं कि निश्चय माने आत्मा, तो आत्मा की श्रद्धा करो तो वो तो निश्चय की श्रद्धा हो गई, क्योंकि आत्मा ज्ञायक है, शुद्ध है, चैतन्य है, ऐसी श्रद्धा करो तो वो निश्चय की श्रद्धा हो गई। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग करो, 5 पापों का त्याग करो, वृत्तशील संयम का पालन करो, ख्याल में आए ना, तो वो व्यवहार हो गया। यानी व्यवहार आचरण में लाना चाहिए और निश्चय श्रद्धान में लाना चाहिए, ऐसा उभयाभाषी की मान्यता। थोड़ी समझने की कोशिश करना, वो समझता है कि एक चीज तो श्रद्धा करने लायक है और एक चीज आचरण करने लायक, जबकि अभी बताया था कि निश्चय और व्यवहार किसी वस्तु का निरूपण करने में, ये बहुत मार्मिक बात है जो मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आपने मुझे बताया कि यहाँ भारत जी ने भी ये प्रकरण कभी लिया था, तो पहले भी आपने सुना होगा तो आपको याद आ जाना चाहिए, समझ में आया ना। और भारत में भी निश्चय व्यवहार की खूब चर्चा होती है लेकिन ये पॉइंट को बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं कि ये दोनों ज्ञान में पैदा होने वाले व्यूज हैं, इनका संबंध ज्ञान से है। निश्चय नए, निश्चय क्या है? वो नए है, समझ में आया? और नए माने किसी वस्तु को मुख करके जानना, वस्तु के किसी अंश को मुख करके जानना, तो एक मुख होगा और बाकी कौन हो जाएंगे, समझ में आया? तो निश्चय भी ज्ञान की चीज है और व्यवहार भी ज्ञान की चीज है, लेकिन यहाँ ज्ञान और श्रद्धान को मिक्स करके, ख्याल में आए ना, तो टोटलबंद जी कहेंगे कि निश्चय की निश्चय रूप श्रद्धा करो और व्यवहार की व्यवहार रूप श्रद्धा करो। अकेले निश्चय की श्रद्धा करोगे तो एकांत मिथ्यात होगा, तो व्यवहार को ये व्यवहार है ऐसा मानना कि नहीं मानना, समझ में आया ना। ज्योति संयोग में मैं वर्तमान में मनुष्य पर्याय का संयोग है ऐसा जानना कि नहीं जानना, ऐसा मानना कि नहीं मानना। तो व्यवहार भी तो श्रद्धान ज्ञान में आ गया ना, तो इन्हें ख्याल करना, समझने की कोशिश करना भाई। देखो, निश्चय इस मान्यता में निम्न दोष हैं, किसी को निश्चय और किसी को व्यवहार मानना मिथ्या है। इसकी चर्चा तो पहले हो गई, श्रद्धा की निश्चय की श्रद्धा करेंगे और प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़ की क्रिया को व्यवहार मानते। सबसे बड़ी भूल ये है क्या, किसी को अपने आप में कोई भी चीज न निश्चय होती न व्यवहार होती, जो होता है वो होता है। पहले दिन कहा था ये रुमाल क्या है, निश्चय के व्यवहार, ये घड़ी ये क्या है, निश्चय के व्यवहार है, ये तो जो वस्तु है वो है, इसके भीतर निश्चय व्यवहार नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान करेंगे या कथन करेंगे तो ये कपड़े का है ऐसा कहना, ये क्या हुआ? निश्चय हुआ। कपड़ा है ना, कपड़ा यथार्थ निरूपण हुआ ना, तो यथार्थ निरूपण माने निश्चय। और ये मेरा है, पंडित जी का है ऐसा कहना, क्या इसमें क्या दिक्कत है? इसे अच्छी तरह पक्का कर लीजिए। पूरा इस सेशन का एक ही महामंत्र, वस्तु एक कथन दो, ख्याल में आए ना? आप कहीं हम भूल जाते हैं किसको निश्चय कहना किसको व्यवहार कहना, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वैसा जाना जाए तो वो निश्चय नहीं का कथन है, और जो उसका संयोगी स्वरूप है पराश्रित कथन करना तो ये उसका व्यवहार निरूपण हो गया। बस निश्चय व्यवहार, इतनी बात है। तो किसी का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। इस पर अपन 3 दिन अच्छी मीमांसा कर चुके हैं, और आपने बताया गया, आपने उसकी वेबसाइट पर भी इसको डाला है, तो आप बार बार सुनिए, इस बात को सुनिए, विचारिए, निर्णय कीजिए। अभी खा खा वाला भूल देखिए, यदि मात्र निश्चय की श्रद्धा करेंगे तथा व्यवहार का सर्वथा निषेध करेंगे तो निश्चयाभास नामक एकांत मिथ्यात्व होगा। ये तकलीफ खड़ी होगी, यदि निश्चय की श्रद्धा करेंगे और व्यवहार की नहीं, व्यवहार की नहीं करेंगे, वो तो प्रवृत्ति की चीज है। अरे ऐसा नहीं है, जो निश्चय नय का कथन है उसको निश्चय नय का जानना, और व्यवहार नय का कथन है उसको व्यवहार नय का जानना। जो जैसा है वैसा जानो वैसा मानो, इसको पंडित जी ने लिखा है दोनों नयों का श्रद्धान करना है। भाषा श्रद्धान की है लेकिन मुख्यतया ज्ञान की तरफ से, क्योंकि मान लेता है ना जीव, इसलिए अभिप्राय की तरफ से बात की है, लेकिन ज्ञान में ऐसा जानता है। देखो, इसलिए निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। अब देखो, वो घी के घड़े में अपन अप्लाई करें कि घड़ा मिट्टी का है, ये कौन से नए का कथन है? निश्चय नहीं। घड़ा घी का है, ये कौन से नए का कथन है? व्यवहार का। अब घी का घड़ा है ऐसा अपन जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानेंगे तो उसमें घी डालना या उसमें से घी निकालना, ये प्रवृत्ति कैसे करें? समझ में आए ना? तो व्यवहार को भी जानना चाहिए, और जैसी उसकी परिस्थिति है, जो उसका व्यू है, वैसा मानना भी चाहिए। वो तो केवल इसलिए कि वस्तु का त्रिकाली स्वरूप वैसा नहीं है, शाश्वत स्वरूप वैसा नहीं है, इसलिए व्यवहार को उपचरित, उपचार को उपचार जानना। क्या कहा? यथार्थ को यथार्थ जानना और उपचार को उपचार जानना। देखो, लोक में सबको ये आदत पड़ी हुई है, सब लोग इस विद्या में पारंगत हैं, कोई इसमें भूल नहीं करता है। लौकिक प्रसंगों में, जैसे कि आपके घर में मेहमान आता है और आप उससे कहते हैं कि आपका ही घर है, आप संकोच मत करना, आपका ही घर है, तो इस आपने ये फॉर्मेलिटी की, ये उपचार किया, तो मेहमान क्या समझेगा? अपने घर है ऐसा समझ लेगा है? तो उसने क्या जाना? उपचार को उपचार। हाँ हाँ, ठीक बात है, हम कोई संकोच नहीं करेंगे, हमारे ही घर है। एक बार मैंने बताया था, आप लोग भूल गए होंगे, कि जब कोई कहे भाई अपना घर समझ के रहना, इसका मतलब क्या है? बिजली फालतू नहीं जलाना, समझे, नल खुला नहीं छोड़ना, पंखा चालू नहीं छोड़ना, टीवी चालू नहीं छोड़ देना है, और घी दूध जो है जो भी अपने घर में जैसा संयम से वापरते हो, मुफ्त का माल मत समझना। ये भी उसके अंदर भरा हुआ है, हैं? फिर इतना भी वो समझता है, अपना घर समझना मतलब बर्बादी मत करना, मिसयूज मत करना, और कोई तकलीफ में भी नहीं रहना। समझ में आया ना? दोनों बातें हैं, कोई तकलीफ में भी नहीं रहना और मिसयूज भी मत करना। तो जिससे कहा गया है मेहमान से, उसने इस कथन का यथार्थ अर्थ समझा है, मतलब इसको सचमुच मान लिया है कि ये केवल कथन मात्र है, ऐसा माना है। बोलो, कथन मात्र माना ना, इसी का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। तो व्यवहार की श्रद्धा, अब ये बहुत मार्मिक बात आने वाली है, कल तो क्या पूजा का प्रकरण है, परसों इसको और आगे डील करके अपन पूरा करेंगे कि व्यवहार की श्रद्धा करना और व्यवहार की श्रद्धा छोड़ना, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। उपचार को उपचार मानना, वो उसकी श्रद्धा करना हुआ, और उपचार को यथार्थ नहीं मानना, ये उसका श्रद्धा छोड़ना। अब अंदर में समझते हैं कि ये तो कहने की बात है, ख्याल में आए ना, तो समझ लो हम उस पर उसको जैसा कहा है वैसा मानते नहीं है। घी का घड़ा बोला है लेकिन घी का घड़ा मानते नहीं है, ऐसा दोनों बातें एक साथ चलती कि नहीं चलती दुनिया में, कि बोलना भी घी का घड़ा और नहीं मानना, ये दोनों में कोई विरोध होता नहीं साहब। अगर हम बोलेंगे तो मानेंगे भी, हम झूठ नहीं बोल सकते, जैसा मानेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा मानेंगे, ऐसे में दुनिया का व्यवहार नहीं चलता है भाई साहब। बोला संयोग की तरफ से जाता है, परास्त्रित कथन होता है, व्यवहार से परमार्थ का निरूपण होता है। आत्मा मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रिंच है, चार गति में घूम रहा है, ऐसे ही मानना पड़ेगा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा व्यवहार में। लेकिन जब अनुभव करने का प्रसंग हो गए तो फिर आत्मा चैतन्य ज्ञान आनंद स्वरूप परमानंद मय है, ऐसा मानना पड़ेगा। बात तो वहां ले जानी है, घी का घड़ा और आपके घर समझना, ये तो सब उदाहरण की बात है, क्या करें, उदाहरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, उदाहरण से वो बात स्पष्ट होती है, ख्याल में आया। देखो तो निश्चय का निश्चय रूप, ये आज का पाठ है मुकुंद भाई, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है, यानी एक्चुअल को एक्चुअल मानना और फॉर्मल को फॉर्मल मानना। मेरे शब्द गलत तो नहीं है, नहीं हो तो सुधार दो, नहीं तो दूसरी जगह तकलीफ खड़ी होगी, अंग्रेजी के शब्द है ना, इसलिए मनोज भाई वो बोल भी बराबर है। एक्चुअल को एक्चुअल मानना और फॉर्मल को फॉर्मल मानना, तो फॉर्मल को फॉर्मल मानना यही उसकी रिस्पेक्ट है, यही उसका यूज किया अपन ने। अगर दुनिया में देखो अगर फॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोलो तो काम चलेगा ही नहीं, ख्याल में आए ना, कि मेरा मकान है ये भी फॉर्मेलिटी है। तत्व की दृष्टि से देखो तो ये भी फॉर्मेलिटी है, मेरा मकान है, अरे इसमें जन्मा, इसमें रह रहा हूँ, मैंने खरीदा है, इसके साथ मेरा राग जुड़ा है, तो मेरा मकान कहकर हम ये बताना चाहते हैं कि इस मकान के प्रति हमारा राग जुड़ा है, तो वो उसको फॉर्मेलिटी में वो बात चलती। लेकिन जब भेद ज्ञान करना हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो, आत्मा का अनुभव करना हो, तो भी यही मान के चलेंगे मेरा मकान है, तो फिर दुखी ही होंगे, क्योंकि मकान तो अपना कभी होने वाला नहीं है, अपन निकल जाएंगे, मकान यहीं का ही रह जाएगा, है अपन चले जाएंगे, दूसरा मकान खोज लेंगे, है? इसको समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को, कौन सा निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। मैं तो इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे बेटी की शादी हुई, तो भारत की बात करता हूँ, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हो, यहाँ तो पता नहीं, वहाँ भी बदलते जा रहे हैं, यहाँ से हवा वहाँ बहुत तेजी से बहती, समझ में आए ना, है यहाँ की हवा तो वहाँ इतनी चली गई कि यहाँ हवा खाली हो गई और वहाँ पे यही की हवा दिखती है। अब हम लोग वहाँ पे लोग ये सोचते हैं जो गांवले में रहने वाले हैं, जो यहाँ के आजकल तो टीवी में सब दिखता है कि वहाँ लोग बहुत फैशन वाले हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, बहुत भोग प्रवृत्ति के हैं, तो यहाँ तो वैसा दिखते ही नहीं है। अपने लोग जो हैं वो तो सिंपल रहते हैं, कोई देखता नहीं तुमने कल का कपड़ा पहना के, परसों का कपड़ा पहना के, वही पहना के, क्या पहना के, दागीना पहना के, कोई नहीं देखता यहाँ, इतने बीतरागी हैं। और वहाँ तो मंदिर जाएंगे तो भी यही देखेंगे कि इसने ये साड़ी कल पहनी थी और यही साड़ी आज भी पहन के आई। बोलो आप कौन सा देश फैशनेबल है पूरब के पश्चिम तो वहाँ क्या होता है कि बेटी की विदा करके ससुराल भेजा, फिर दो पांच दिन बाद में उसको वापस ले आते हैं, एक वीक के बाद में थोड़ा उधर घुल मिल जाए, लेकिन एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाती ना, समझ लो विवाह होना पुनर्जन्म है उस जमाने के हिसाब से, दूसरा जन्म है वो, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाती। फिर घर पे लेके आए तो 15 दिन महीना जिसकी अनुकूलता होवे तो वो वहां रहती है। फिर उसको लेने के लिए जमाई राजा आए, समझ में आया ना। पहली पहली बार ससुराल आया शादी के बाद में, अकेले आने में थोड़ा सीन संकोच मर्यादा शर्म लिहाज लगती है, तो उसकी भी तो इज्जत का सवाल है कि ससुराल में कुछ गड़बड़ न हो जावे। तो वो दो चार दोस्तों को साथ में लाता है। फिर तब यहाँ से अपना उदाहरण चालू होता है, घर में जमाई भी आया और मित्र भी आया, तो दोनों को जानना मानना कि अकेले एक को ही जानना मानना, लेकिन दोनों को जो जैसा है वैसा मानना कि एक तरीका मानना। कोई कहे कितने लोग आए, 5 लोग आए, तो 5 जमाई है क्या? जमाई एक है, असली एक है, और बाकी के उसके साथ में रिलेशन रखते हैं, भाई कजिन ब्रदर हो गए कि मिलने वाले हो गए कि मित्र हो गए, तो लेकिन हम उसको जमाई नहीं मानते, समझ में आए ना। उसके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो पूरा खान पान में बोल चाल में आदर देने में वो सब एक तरीका होता है, उसमें फर्क नहीं करते, लेकिन असली चीज में फर्क करते। जो भेंट में कवर देते हैं ना, समझ में आया, तो कवर के अंदर जो वजन होता है उसमें फर्क होता है, हैं? जमाई को अगर समझ लो, पता नहीं आपके यहाँ क्या रिवाज है मुझे पता नहीं, हमारे ऐसे जमाई के उसमें मान लीजिए आपने 5,000 रुपया रखे तो बाकी के 500 में रखे जाएं, जमाई के में 500 रखे तो उसमें 5100, समझ में आया ना, देंगे सबको, लेकिन उसमें अंतर होता है। तो बस निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप, जमाई को जमाई मानना और जमाई के दोस्त को दोस्त मानना, बोलने में उसको भी, हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है जीजा जी का भाई हो मैं उसको जीजा जी बोलते है कि नहीं, बहनोई के भाई को भी बहनोई बोलते, बहनोई के दोस्त को भी बहनोई बोलते, अगर ऐसा फैमिली जैसा रिलेशन उस टाइप का हो गए। चाचा के मित्र को भी चाचा कहते कि नहीं कहते, मामा के मित्र को भी मामा कहते हैं, ये तो सब जगह है ना। तो फिर मामा और मामा का मित्र, तो मामा के मित्र को मामा कहना वो व्यवहार है, तो वैसा रिस्पेक्ट देना, वैसा मानना कि ये मामा का मित्र है, इसका नाम व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान, समझ में आया। और उसे मामा नहीं मानना, ये समझ लो उसका हे बना हो गया। हे करने के लिए उसको कोई घर से बाहर निकालना है ऐसा नहीं है, है? देखो निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना योग्य है। अभी तीसरा पॉइंट भी समझना, ये लेके अपन पूरा करते हैं, ये तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखना। वैसे प्रकार अंतर से बात तो सब आ चुकी है, प्रवृत्ति में नए नहीं होते, क्या प्रवृत्ति माने एक्शन क्रिया, क्रिया में नए नहीं होते, अभिप्राय अनुसार उसका निरूपण करने में नए होते हैं, इसलिए प्रवृत्ति जब नए होते ही नहीं तो प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना चाहिए, इस कथन का क्या मतलब? थोड़ा बहुत समझ में आया किसी को मुकुंद भाई, है? उसने क्या कहा था कि निश्चय की श्रद्धान करेंगे और व्यवहार की प्रवृत्ति करेंगे, तो पंडित जी ने इसके दो जवाब दिए। देख भाई, निश्चय को निश्चय मानो और व्यवहार को व्यवहार मानो, ये मान्यता की चीज हो गई, जैसा है वैसा मानो, जानो मानो, समझ में आया ना। तो ये तो उन्होंने निश्चय की श्रद्धा का जवाब दिया, पर सामने वाला कहता है प्रवृत्ति व्यवहार की करेंगे, वो कहते प्रवृत्ति में नए होता ही नहीं, प्रवृत्ति माने क्रिया। अब आप भी समझ लो, कल अपन पूजा करेंगे और हम आपसे पूछें कि वो निश्चय कर रहे हैं कि व्यवहार कर रहे हैं, तो आप सब बोलेंगे व्यवहार। एक पूजा की क्रिया पूजा है, पूजा पूजा है, वो न निश्चय है न व्यवहार। लेकिन पूजा का कथन दो तरह से किया जाएगा कि वितरागी देव की पूजा है, ख्याल में आए ना, तो उसे मोक्ष मार्ग कहना ये निश्चय ने का, ये व्यवहार ने का कथन होगा, और वो बंध का कारण है, सुवराग है तो पुण्य बंध का कारण है, ये कहना निश्चय ने का कथन है। अनेक बहुत सारे व्यू से निश्चय व्यवहार बनेंगे अकेली पूजा में, समझ में आया ना कैसे? अभी तो उसका फल क्या मिलेगा, तो मोक्ष मिलेगा कि बंध मिलेगा, तो मोक्ष का कारण है परंपरा से, ऐसा कहना वो व्यवहार ने का कथन हुआ, और बंध का कारण है वो निश्चय ने का कथन हुआ। तो दूसरा कि ये बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? शरीर के आत्मा, शरीर वाणी, हाथ से अर्घ चढ़ा रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किसकी क्रिया है? पुद्गल की कि जीव का, आत्मा की? पुद्गल की। तो पूजा करना पुद्गल की क्रिया है ऐसा जानना मानना वो निश्चय नहीं का कथन है, हैं? और आत्मा का राग उसके साथ में है तो आत्मा पूजा कर रहा है ऐसा कहना जानना मानना वो व्यवहार नहीं का कथन हो गया। तो प्रवृत्ति पूजा में नए नहीं है, नए उसका कथन करने में, उसे जानने में, इसकी ओर आप ध्यान दीजिए। देखो प्रवृत्ति में नए नहीं होते, अभिप्राय अनुसार उसका निरूपण करने में नए होते हैं, अतः प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना चाहिए। अभी तो यहाँ हमने आपको उदाहरण में पुण्य क्रिया का उदाहरण दिया क्योंकि उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, और पाप क्रिया दुकान करना, व्यापार करना, अब निश्चय है कि व्यवहार है, वो फार्मूला लगाना, प्रवृत्ति में नए नहीं होते, ख्याल में आए ना? तो फिर तो निश्चय व्यवहार कैसे लगेंगे? वो जो व्यापार करना जो पुद्गल की क्रिया है तो उसको पुद्गल की क्रिया है ऐसा जानना वो कौन से नए का कथन हुआ? निश्चय नए का कथन हुआ। और आत्मा यानी मैं व्यापार करता हूँ ऐसा कहना ये कौन से नए का कथन हुआ? व्यवहार नए का कथन हुआ। अभी सुख दुख का लगाओ कि व्यापार करने में लाभ हुआ तो मुझे बहुत आनंद आया, तो व्यापार में से आनंद आया ऐसा मानना ये व्यवहार नए का कथन हुआ, ख्याल में आया? और मैंने अपने राग में आनंद माना वो आनंद मेरे राग में से उत्पन्न हुआ है, इंद्रिय सुख, ख्याल में आया ना? आत्मा में से उत्पन्न हुआ है ऐसा मानना ये निश्चय नहीं का कथन है। निश्चय से आत्मा में ही वो अनुभूति प्रकट हुई है, कोई उसमें से नहीं आई, कोई अतिंद्रिय आनंद की बात नहीं है। यूं समझ लो कि जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख, बहुत मार्मिक बात है गिरीश भाई, विषय सुख विषयों से पैदा नहीं होता, हमारी कल्पना में खड़ा होता। और ये बात जैन दर्शन की नहीं, हमने इकोनॉमिक्स में जब एक बात पढ़ी थी, शायद यहाँ उदाहरण दिया होगा गारंटी से, एक लॉ पढ़ते थे हम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ख्याल में है ना? उपयोगिता ह्रास नियम। आपको बहुत तेज भूख लगी है तो अब घर पे आए, उन्होंने कहा जल्दी खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लगी, उन्होंने हाथ मुंह धो के आओ, गरम गरम रोटी, बढ़िया, भारत की बात कहता हूँ, यहाँ तो माइक्रोवेव में गरम कर देते हैं, समझ में आया ना? है गरम गरम रोटी माइक्रोवेव में गरम कर देते, पहली रोटी में जो सेटिस्फेक्शन होगा यही शब्द है संतुष्टि, अर्थात में सुख शब्द नहीं है महेंद्र भाई, संतुष्टि, पहली रोटी में जो सेटिस्फेक्शन होगा दूसरी में उससे कम होगा। उदाहरण के लिए उन्होंने उसके नंबर दिए कि पहली रोटी में 10 पॉइंट सेटिस्फेक्शन है तो दूसरी में 8 पॉइंट है, अब तीसरी खाएंगे तो 2 नहीं गिरेगा, 2 पॉइंट कम नहीं होगा, 3 पॉइंट कम हो, मतलब वो रेट भी उसका गिरता जाएगा, समझ में आया ना? पहली रोटी में 10, दूसरी में 8, तीसरी में 5, और अगर जबरदस्ती और खाली मान लो चौथी तो हो गया 3, और पांचवी खाई तो 0, और छठवीं खाई तो माइनस, ऐसा है, बोलो। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो पहली रोटी में सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था वो रोटी में से आ रहा था कि अपनी मानसिक स्थिति में से आ रहा, तो मानसिक कल्पना है, तो अब तो अपने में ही पैदा हुई ना, अपन ने पैदा की और अपने में पैदा की, उसमें से कहाँ आया? तो पांच उंगली के विषयों में से सुख होता है ऐसा कहना व्यवहार में का कथन, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, ख्याल में आया ना? लेकिन वो सुख मैंने अपनी कल्पना में से कल्पना से खड़ा किया है, वो सुख पराधीन नहीं, पराश्रित नहीं है, वो आत्मा, वो पर्याय आत्मा से, आत्मा में पैदा हुई, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखना, लक्ष्य तो पर का, लेकिन पर का लक्ष्य किसने किया? पर ने कि अपन ने, खुद ने? गजब बात है, ये जीव पराधीन होने में भी स्वाधीन है, क्या बोला? अपने जैसे प्रेसिडेंट चुनते हैं 4 साल में, हमारे देश में 5 साल में चुनाव होते हैं, तो सबको वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार का मतलब समझते हैं, तो 5 साल तक कौन पार्टी हमारे ऊपर शासन करेगी, यानी हम किसके गुलाम रहेंगे, ये चुनने में स्वतंत्र है। वोट में किसी की मर्जी नहीं चलती, वो अपनी मर्जी से आप दीजिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है कानूनन, समझ में आया ना। लेकिन हम वोट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, जो हमें पराधीन बनाएगा, जो नए नए टैक्स लगाएगा, जो गैस का भाव बढ़ाएगा, पेट्रोल का भाव, रसोई गैस चले LPG का भाव बढ़ाएगा, सेल टैक्स बढ़ाएगा, इनकम टैक्स के रेट बढ़ाएगा, जो हमारा मालिक बनेगा 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए अपना मालिक बनने में हम स्वतंत्र हैं, यानी पराधीन होने में भी ये जीव स्वतंत्र है, समझ में आया ना। देखो 5 मिनट के विषय पुण्य पाप के उदय से मिलते हैं, पुण्य के उदय से अनुकूल मिलते हैं, ठीक है। अब हम उसका लक्ष्य करें कि नहीं करें, हम स्वतंत्र हैं। तो लक्ष्य करने में भी स्वतंत्र है, विषयों का लक्ष्य करने में भी, दुखी होने में भी आत्मा स्वतंत्र है। ये प्रवचन सार की 16वीं गाथा जिसमें स्वयं भू शब्द आता है और उसकी व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है कि आत्मा संसार में घूमने में भी स्वयं भू है और मोक्ष जाने में भी स्वयं भू है। तो इस एंगल से मैंने ये कहा कि जो व्यापार किया तो मैंने व्यापार किया ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है, ऐसा कहना व्यवहार है, समझ में आया ना। लेकिन वो व्यापार वो तो ऑटोमेटिक क्रमबद्ध पर्याय के नियम से स्वयं स्वयं में सभी वस्तुएं स्वयं परिणमित होती हैं, अभी पढ़ा था ना, ऐसा मानना वो निश्चय में का कथन। तो व्यापार न तो निश्चय है न व्यवहार, पूजा न तो निश्चय है न व्यवहार, सम्यक दर्शन न तो निश्चय है न व्यवहार, वो भी आत्मा की क्रिया है, वो भी आत्मा की परिणति है। लेकिन सम्यक दर्शन की परिभाषा अपने में अपनापन करना, वो सम्यक दर्शन है। एक परिभाषा ऐसी आती निश्चय व्यवहार की, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, यही मतलब है। स्वाश्रित माने उस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा कथन करना, ये स्वाश्रित। और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, तो ये पराश्रित निरूपण हुआ, इसलिए ये व्यवहार हुआ। तो फार्मूला क्या हुआ, प्रवृत्ति में नए नहीं होते, समझ में आया। जिस द्रव्य की परिणति है, लिखा है देखो, प्रवृत्ति में नए नहीं होते, अभिप्राय अनुसार उसका निरूपण करने में नए होते हैं, निरूपण में ज्ञान में, कि जिस द्रव्य की परिणति है उसको उसी की कहना तो निश्चय में है और उसे अन्य की कहना वो व्यवहार में। तो ये बात मैंने कही, अभी निश्चय और व्यवहार दोनों का श्रद्धांत करना चाहिए। और दोनों का श्रद्धांत करने का क्या मतलब होता है, इसका थोड़ा मैंने इशारा कर दिया है, मंडे को अपन इस कथन को विशेष डेवलप करेंगे, अभी का समय अपना हो गया।